सुख शांति नहीं है। तो फिर कैसे सुख शांति होगी? मैं कौन हूं? सुख शांति जो चाहने वाला, ये कौन है? या शरीर? शरीर के बाद में जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब तो आदमी कुछ चाहता नहीं है। वो जो चाहता है सुख शांति, वो कौन है? हम क्यों ये अज्ञान में पढ़ने समझ नहीं रहे इन सब बातों को? इन सब का ज्ञान तत्वों को जानने के लिए जो आतुर हो पड़ता है तो वो देखता है कि कोई उपाय नहीं है, कहीं भी हम इस चीज को नहीं जान सकते, तो वो भगवान का शरणागत होकर के उनका भजन कर। ज्ञानियों में विवेक होता है, ये नश्वर चीजें हैं, मैं ये नहीं हूं, संसार का मैं कोई वस्तु नहीं हूं, इसलिए भगवान को कुछ प्यारे होते हैं। और ये लोग लाखों लाखों कोटि कोटि जन्मों के बाद में वासुदेव ही सर्वमिति हैं, उन्हीं से ये विश्व है, उन्हीं का ये अंत जीव है, उन्हीं की ये माया है, उन्हीं का भजन करना चाहिए, ऐसा समझ करके भगवान के चरणों में प्रीति, इसलिए वो लोग प्यार। तो ये गीता में बतलाया गया ये चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही बतलाया गया, किंतु इसी श्लोक में एक शब्द है सुकृतिनो अर्जुनः। मान लें कि विपत्ति हम सभी पर पड़ती है, भगवान को पुकारते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नहीं करते, भगवान उस समय विपत्ति आने पर भी सुनेंगे नहीं। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको विपत्ति नहीं आती। कंस के ऊपर में विपत्ति आई, भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, हिरण्यकश्यपु रावण के ऊपर में भी विपत्तियां आई, मेघनाद पर भी विपत्ति आई, उन लोगों ने भगवान को पुकारा कि आप हमारी रक्षा कर दें। अभी हमारी इंदिरा गांधी और उसके बेटे दोनों थे, मरते समय में भगवान से प्रार्थना की होगी, जिनकी पूर्व जन्म का संस्कार और सुकृति नहीं है, जिन्होंने साधु संघों की सेवा नहीं की, ऐसे व्यक्ति लोगों का स्मरण नहीं होता। चार प्रकार के लोग ये जो बतलाया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञान, ये चार प्रकार के दोष हैं। मैं बहुत बड़ा भारी ज्ञानी हूं, मैं तत्वज्ञानी हूं, ये भी दोष है। अर्थ की लालसा भी दोष है, अर्थ होना, दुख में पड़ जाना, ये भी दोष है। जिज्ञासा तत्व ज्ञान नहीं है, उसके लिए पूछ रहे हैं। यदि इसी समय में पूर्व जन्म की कोई सुकृति हो, संस्कार हो, तब तो उस समय उसे याद आएगी और भगवान का शरणागत होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सिलीगुड़ी एक जगह है, उसमें हम लोग 15-20 आदमी की 40-50 आदमी संन्यासी ब्रह्मचारी हम लोग गए, वहां एक आदमी मर रहा था, अभी अब मरेगा तब मरेगा, कभी मैं जल गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, बस ये जल रहा, वो जल रहा, मर गया, मर गया। घर वाले कह रहे हैं जैसे तू एक बार राम नाम कृष्ण नाम ले, और कोई चिल्ला, वो कहता नहीं। हम लोग गए देख करके कुछ शांत हुआ, हम लोगों ने भी चेष्टा की, अच्छा कृष्ण कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, ये प्रभु हमसे ही आता ही नहीं है, निकल ही नहीं रहा, ये प्रत्यक्ष दर्शन देखी हुई बात है, आजमाई हुई बात है, पूर्व जन्म में जिसका ही या इसी जन्म में उसका संस्कार नहीं होगा तो हजार का वो नहीं कहेगा मुझसे इतना नहीं कहा जाता, तो तुम इतना नहीं कहा जा सकता है कह सकता है और राम नाम नहीं कर सकता, नहीं निकलेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आओ, नहीं निकलेगा राम कृष्ण, ये पक्की आजमाई हुई है। इसलिए बचपन से यदि हम करें संस्कार हो साधु संग मिल जाए तब तो होगा, ये भागवत उसी की एक कड़ी है जो याद रहे भगवान का, ये संस्कार हम लोग बना रहे हैं, जैसे हम लोगों के गुरुओं ने हमारा संस्कार बनाया आप लोगों के भी इस तरह से संस्कार। तो जैसे अभी आज का प्रसंग आएगा गज और ग्राह में युद्ध हुआ, बड़ा भारी गजरा त्रिकुट की पहाड़ियों में समुद्र के किनारे सोने जवाहरात पन्नों से उभरा पड़ा, बड़ा ही सुंदर दृश्य जंगल का, उसमें बेली बेली चमेली और अनार इत्यादि ऐसा कोई फूल और फल नहीं है जो वहां पर न हो, और वहीं पर समुद्र के किनारे समुद्र उसका चरण धो रहा है और सुंदर सरोवर बगीची देवताओं का वहीं पर या किसी ऋषि का वो कानून था बगीचा था, बीच में एक बहुत गहरा सरोवर और तरह तरह के उसमें बन थे और उसमें कमल के फूलों से कल्लार के फूलों से वो भरा हुआ, केले के बगीचे चारों तरफ में लगे हुए और एक मदमस्त हाथी हाथियों का युद्धपति हजारों हाथियों को साथ में लेकर के अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के और ग्रीष्म ऋतु गर्मी से तड़फड़ा गया पानी की खोज में सूंड ऊपर उठा करके सूंघा, देखा जिससे इस तरफ से सुंदर हवा आ रही है और उसमें पानी के कण उधर ही चल पड़े और उस सरोवर में गया और वहां पर खूब पानी पिया भरपेट सुगंधों से भरा केसर से भरा पड़ा सुंदर निर्मल पानी, और फिर जब ठीक हो गया ताप शांत हो गया अपने सूंड से पानी लेकर के अपनी पत्नी के ऊपर में वो छिड़कने लगा और अपने बच्चों को धुलाने लगा, कभी उनके मुख में पानी छोड़ दे फिर एकदम मत्त हो गया। उसी समय किसी ग्राह ने उसका शरीर उसको पकड़ लिया था, कितने हजार वर्ष तक खींचातानी होती रही सब लोग चले गए, इसको कहते हैं आर्तपुण, जब कोई भी रक्षा कर सका हथनियां भी छोड़ करके चली गई, उसके बच्चे चले गए कोई भी उसको नहीं बचा सका। उस समय में कुछ पूर्व जन्म का संसार इसको कहते हैं सुकृति, क्या सुकृति थी अभी ये बतलाएंगे, संक्षेप में हम बतला रहे हैं ये इनके लिए भी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। सुकृति थी पूर्व जन्म में कोई देवता था उहू नाम का कोई गंधर्व था,
तो मोगर
और कौन ऋषि
देवल
ऋषि, वो गए तो उनका पैर पकड़ लिया पानी में, तो उन्होंने कहा जो जाओ मगर बन जा, किंतु वो कुहूत बैठता था, भगवान की उपासना भी करता था कुछ, और साधु संत तो कहा कुबेर का वो था, कुबेर के वो अनुचर हैं, कुबेर बड़े भगवत भक्त हैं और शंकर जी से कुछ संबंध था, इस संबंध के नाते उसको अंत में ये याद आई, सुकृति थी ना, यदि सुकृति नहीं होती तो याद नहीं आती, इसलिए याद आई, प्रभु आपके सिवा और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, आप अशरण शरण सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले आप मेरी रक्षा करें, और उनकी तरह तरह से स्तुति करने लगा, किसी देवता का नाम नहीं लिया, भगवान के किसी भी नाम को उसने लिया नहीं, देवताओं का नाम नहीं लिया इसलिए कोई भी देवता नहीं आए, किंतु गुणों का जो वर्णन किया वो तो एकमात्र प्रभु में ही वो है संभव, इसलिए प्रभु उसकी प्रार्थना सुन करके झट महाज उनको देखा, उसका चित्त निर्मल हो गया, उसने कहा कि ये शरीर की क्या जरूरत है, शरीर प्रारब्ध से मिला है, प्रारब्ध से रहेगा या जाएगा, इसके रहने और नहीं रहने से कोई भी बात नहीं, मैं प्रभु को इसके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं कि हमारी रक्षा करें, बस आपकी चरणों में हमारी अहेतु की भक्ति प्रदान करें, मैं यही चाहता हूं, बस प्रभु से रहा नहीं गया, झट वाए गरुड़ पर चढ़ करके, वेदों की मूर्ति गरुड़ है और दोनों को पकड़ करके मिनटों में उसे सिर पर तट पर ला दिया, और देखते देखते चक्र से उसका गला चीर दिया और उसको निकाल दिया, उसने एक पुष्प लिया था, पुष्प लेकर के कमल, और जैसे हूं उनके चरणों में, मैं अपने को आपके चरणों में समर्पित करता हूं, बस इसी से प्रभु आए और संकट से उबार दिया, और साथ ही साथ भगवान के छूने से वो जो ग्रह था वो हु का रूप बना करके और प्रभु को प्रणाम करके स्तुति करके चला गया, और ये इंद्रद्युम्न राजा थे, पूर्व जन्म में क्षत्रिय राजा थे, घर बार छोड़ करके और जंगल में चले गए, योग्यता थी नहीं, अनाधिकारी थे, तभी सबको छोड़ करके देह में आसक्ति भी थी, इसको छोड़ छाड़ करके सबको वन में चले गए, और कुछ हरि भजन का वैसे जैसे ध्यान इत्यादि करने लगे, भगवान का नाम से थोड़ा सा संबंध हुआ, किंतु भजन क्या है, न गुरु न कोई कुल, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए भजन ठीक से नहीं कर सके। एक दिन अगस्त ऋषि आए, उनका सम्मान नहीं किया, ऋषि का दर्शन का एक फल मिला, बस उनका संस्कार कुछ जल गया, कहीं ये प्रारब्ध में जो होना था तो हुआ, बस अपने को प्रारब्ध का वो मान करके सुखी रहे और कुछ दिनों के बाद में हाथी होकर के, और वही भगवान का वही संस्कार का फल हुआ जो भगवान का स्मरण हुआ। इसलिए दूसरे जो विपत्तियां पड़ जाएंगे उनका नहीं होगा, इसलिए दिखलाते हैं ये संस्कार सब हरिगुरु वैष्णव के संग से होता। यहाँ जो कथा हो रही इसका संस्कार होगा, ये अव्यक्त होगा, इसमें देरी लग जाएगी। कब? यदि कोई सांसारिक वासनाएं उसके बीच में यदि आ जाएगी, मैं पाठ सुन रहा हूँ इसलिए कि हमको लड़का हो जाए, हमको संपत्ति मिल जाए, हमारी दुकान अच्छी तरह से चल जाए, हमारा लड़का पास हो जाए, मैं सुखी हूँ, ये यदि हो गया तो सब बीच में रोड़ा अटक गया तब, और नहीं तो इसके सुनने से ही भगवान के अंदर में प्रीति उसकी होगी अवश्य भाव। उसी प्रकार से हम चारों का विचार जब करते हैं, ध्रुव जी अर्थ की लालसा उन्होंने की, और अर्थ के लिए, अर्थ माने राज्य के लिए, माता के बाणों से विद्ध हो करके बागवाणी से और वन में चले गए, हरि का भजन किया। किस लिए? राज्य के लिए, जो पिता का राज्य है उसका मैं अधिकारी हूँ। किंतु देखिए सौभाग्य था जी नारद जी मिल गए, यदि नारद जी नहीं मिलते तो उनको कोटि जन्मों में भी भगवान नहीं मिलते, उसे तपस्या से नहीं मिलते। इसलिए भगवान के मिलने के कारण भी गुरु हैं और नारद जी जैसे गुरु, क्यों? उच्च संस्कार था, उसकी मैया बड़ी भक्त थी, बचपन से उसमें संस्कार दे रखी थी, इसलिए उस संस्कार को जैसे उन्होंने भगवान को दर्शन पाया भगवान का, और दर्शन पाने के बाद में जब दर्शन किया उनकी वो जो अर्थ की लालसा से दूर हो गई, मैंने कांच के लिए ये तपस्या की, आराधना की भगवान, और मुझे चिंतामणि भगवत का दर्शन मिल गया। उन्होंने 36,000 वर्ष का मुझे जो राज्य दे दिया, ये बेकार में इस झंझट में पड़ा रह गया कांच के टुकड़ों को बटोरने के लिए, हमारे ये 36,000 वर्ष बेकार का गया, प्रभु अब हमको ये नहीं चाहिए। किंतु तो प्रभु ने वर्ष दे रखा था कि 36,000 वर्ष भोगना पड़ेगा, इस छोटी सी बात के लिए 36,000 वर्ष चला। किंतु नारद जी की कोई थोड़ी सी कृपा थी इसलिए भगवत दर्शन हो गए, इसके बाद में उनको भक्ति मिली। किंतु वो भक्ति नहीं मिली कि वो बैकुंठ में चले जाएं अथवा ब्रज में चले जाएं, वो नहीं। ब्रज में जाने के लिए कुछ और चाहिए, उसके चाहिए वैसा गुरु। कैसा गुरु होना चाहिए? वो नारद जी के परामर्श से भी होगा किंतु इससे अधिक नहीं होगा। ये यदि गोपियां किसी प्रकार से अनुग्रह कर दें और गोपियों के अनुगत में रह करके भजन करेंगे, या ऐसा जो उन्होंने किया है ऐसे चैतन्य महाप्रभु के परिकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हैं, इनका यदि कोई भजन करे और वैसा अनुसार सब ब्रज की भक्ति मिल सके, बिना ब्रज भाव के रखे वो चीज नहीं। उसी प्रकार से सोनों का भी 60,000 रीति से कलजी के भय से भगे और तपस्या की, इतनी तपस्या की और आराधना यज्ञ इत्यादि क्या स्वाहा स्वाहा, उनका ऊपर और भीतर दोनों काला हो गया, कुछ लाभ नहीं हुआ। केवल स्वाहा स्वाहा करने से कुछ नहीं होगा, यदि उसके बदले में यदि एक बार कृष्ण कहते ना तो काम बन जाता, किंतु कृष्ण कृष्ण कहा नहीं। वो स्वाहा स्वाहा इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, बस इसी देवताओं की बलि स्वाहा स्वाहा करते रहे, किंतु भगवान के लिए कुछ नहीं किया। किंतु कुछ संस्कार था ऋषियों का, इसलिए उनको कुछ स्मरण हुआ, तो वहां पर श्रीमद् भागवत का बैठा दिया यही, और भागवत की चलने लग गया, पुराण चलने लगे, वही सुन करके तब फिर उनका कल्याण हुआ। उनको जिज्ञासा थी हम भव सागर से कलयुग से कैसे तरेंगे, उनको वो सुत गोस्वामी मिल गए, भगवत भक्ति सच नाम संकीर्तन के द्वारा कले दोष दे राजनस्ते हे को महान गुण, सब दोष कलिकाल में है किंतु इसमें महान से महान गुण ही है, भगवान का थोड़ा सा भी नाम कीर्तन कर दिया जाए, चलते फिरते अबट हो करके भी जैसे तैसे भगवान का यदि हो जाए नाम, किंतु अपराध नहीं होना चाहिए वैष्णव के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति अवज्ञा इत्यादि नहीं। और क्या, शंकर जी भी वही भगवान है, कृष्ण भी वही भगवान है, यदि किया तो भक्ति रूठ ही जाएगी, भक्ति नहीं आएगी, सभी उनके दास दासी हैं, और जितने अवतार हैं सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान सन, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, किसी प्राणी मात्र को अनादर मत करो, अवज्ञा मत करो, किंतु भगवान के बराबर किसी को मत मानो। एक ही आसन पर ठाकुर जी राधा कृष्ण को भी बैठा दिया, बाल गोपाल को भी, रामचंद्र जी को भी, इधर में गणेश जी को भी, इसके बाद शंकर जी को भी, संतोषी मैया भी नई नई बड़ी सुंदरी अभी युवा वाली आई हैं, उनको भी बैठा दिया, और जवा फूल चढ़ा दिया साथ में लाल लाल, और साथ साथ में कनेर के फूल भी चढ़ा दिए, और साथ साथ में बेली चमेली भी, और गुड़चना भी उनको दे दिया। तो उससे भगवान का तिरस्कार होता है ना, अपनी मैया के पास में किसी अत्यंत दुराचारी, किसी दुराचारी महिला को बैठा करके और दोनों के एक बराबर पूजा करो तो क्या होगा, मैया बैठी भी वहां। उसी तरह से कृष्ण सर्वाराध्य हैं, समस्त अवतारों के भी मूल हैं, समस्त देवताओं के भी आराध्य हैं, उनके बराबर न तो कोई है और न कोई होगा, इसलिए उनकी आराधना ऐसी। सब सुत गोस्वामी के वचनों से सोनकादि ऋषि इत्यादि सब चीज सोच करके भगवान का भजन करके ज्ञानियों में ये सनक सनंदन इत्यादि बड़े ज्ञानी थे, तत्व ज्ञान बहुत था, ये जगत नई थी नई थी नई थी, ये भगवान है नई थी, ब्रह्म है नई थी, सब नश्वर चीजें हैं, शरीर ये भगवान है ब्रह्म है नई थी न, इतने इतने खोजते 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 खोज रहे हैं ढूंढ रहे हैं ये इति क्या है, हमारे जैसा ही एक परम बुद्धिमान एक गुरु का शिष्य था, जैसा मैं बुद्धिमान हूं, अपने को बहुत बुद्धिमान मानता था, गुरु जी उस चेले को हमारे जैसे चेले को लेकर के किसी जगह गए, वहां पर जो उनका शिष्य था वो बहुत बड़ा भाई कोई अवसर था, उस समय में देखा जो कोई नई सब्जी जो उठी हो जो 25-30 रुपए केजी का हो और नई बिल्कुल हो, वो सब्जी ले आकर के शिष्य को दे करके, जैसे शिष्य मैं जा रहा हूँ ऑफिस, इसको सुंदर रूप से सब्जी बनाना और गुरु जी को भोग लगाना, मेरे लिए भी थोड़ा सा रख देना प्रसाद, मैं शाम को लौटूंगा। उसने नई गोभी बंद गोभी उसने खरीदी और ले करके उनको शिष्य जी को दे दिया, इसको अच्छी तरह से रसोई बना करके और दे। जब वो चला गया तो सहज जी बड़ी अच्छी सब्जी ले आया है, बड़ी इतनी बड़ी है, तो सोचा जो ऊपर में पत्ता भीतर में कुछ होगा, तो ऊपर का पत्ता उठाया देखा जी फिर एक पत्ता हटाया नौ इंची ये नहीं है, फिर उठाया फिर उसको फेंक दिया। ऐसे करते 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 सब जितनी बंद गोभी के जो पत्ते थे कोमल तुमल उनको भी फेंक दिया। अंत में जब देखा तो वही पत्ता कई बेकार फेंक दिया। शाम को वो आया, अरे गुरु जी को सब्जी बनाई तो बनाता ना खाक बनाता, क्या बनाता उसमें कुछ था ही नहीं। अरे आलू के छिलके हैं उसको छिल दो उसमें से आ जाएगा, पपीता है आ जाएगा, किंतु उसमें कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं, किंतु है क्या खोज न सके। ब्रह्मा जी को दया आई, उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी है उसका मकरंद उनके नाक में दिलवाया। अभी कहां से सुगंध आ रही है देखेगा, चलो बस उनको बैकुंठ लो। भगवान का दर्शन करते ही कृतार्थ हो गए, फिर उनके पास में भक्ति करना। इथम भूत गुणो हरि आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथा अपि उरुक्रमे कुर्वंत है तो किं भक्ति इथम भूत गणी। भगवान के ऐसे ही गुण हैं कि ऐसे ऐसे जगत से जिनको ये सब दूर हो गए अनासक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो ब्रह्म में एकदम लगे हुए हैं जिनकी भी मत्ति निर्विशेष ब्रह्म में, उनको भी खींच करके अपनी भक्ति में लगा देते हैं। अंत में ब्रह्मा जी के कृपा से उनका वो ज्ञान दूर हो करके निर्विशेष ज्ञान, तब उनको भगवत भक्ति। ये चारों दुर्गुण हैं किंतु भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के कृपा से जब ये दूर हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति, इसको कहते हैं सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, सुकृतिशाली मनुष्य ही ये चार प्रकार के भगवान का भजन करते, सभी नहीं करेंगे। इसी का श्रीमद् भागवत में प्रथम उसमें और दूसरी जगह में भी दिया गया। हम लोग भी ऐसे ही भक्ति करेंगे जिससे कि भगवान के चरणों में ऐसे ही उत्तमा भक्ति हो। विशेष करके हम लोग मथुरा में वास करते हुए, वृंदावन में वास करते हुए गोपियों ने जैसी आराधना की थी उसके अतिरिक्त दूसरी कोई आराधना नहीं करना चाहिए। उसी से ही ब्रज में हम लोगों का कल्याण होगा। हम लोग उसी प्रकार की हम लोग भक्ति पा करके कृष्ण और ये किशोरी जी की हम लोग सेवा को प्राप्त, इससे बढ़ करके जीवों के लिए कुछ भी प्राप्त और कुछ भी पाने योग्य है नहीं। यही भागवत का संदेश है। अब आप लोग श्रीमद् भागवत से आगे का प्रसंग गौ प्रमानंदे हरि की। उन्होंने त्रिपाद भूमि से सबको पृथ्वी को और 14 भूमियों को माप लिया और इतना विकराल रूप धारण किया तो बड़ी क्रोधित हो गई। इसने जिस पैर से मापा था जिस अंगों से, इसने तो छल किया, उसी पैर से मापे जैसा वो बच्चा था उसी बाउन अंगुल का था उसी से मापे, तो इसने तो इतना रूप ये नहीं मांगा जैसे हम इतना रूप बढ़ा देंगे और सब ये सब ले लेंगे। इसने छल चातुरी की और हमारे पिताजी को राज्य से श्री से सब भ्रष्ट कर दिया, सब कुछ ले लिया। इसलिए यदि मेरा बेटा तो हो ठीक है किंतु मैं इसको 20 पान कराऊंगी तन में लगा करके और इसको मार डालूंगी। इसीलिए यही उतना होकर के अगले जन्म में आई और उसका बदला चुकाने आई, और क्योंकि माता का भाव रखा था पहले इसलिए प्रभु ने उसका स्तन पान करके बीज पान करके दी, उसको माता की धात्र उचित अतः माता जैसे कभी। भगवान कितने बड़े दयालु, बीज पान करने के लिए जाए किंतु पुत्र का भाव होने के वजह से उन्होंने माता का भाव दे करके और उसको स्वर्गति कर। भगवान ऐसे दयालु, ये इसमें एक विचार आ गया। उन्होंने बलि महाराज के ऊपर में कृपा की छल बल से उसका सब कुछ हर लिया और देवताओं को दे दिया। नहीं, उनकी बड़ी भारी कृपा। वृत्रासुर उपाख्यान में आप लोगों ने सुना जो वृत्रासुर कह रहा है, अरे बराक इंद्र तू बड़ा भारी दुर्भाग्य है, तुम्हारा जन्म वृथा गया, तूने भगवान से वामन देव तुम्हारे साथ में सब समय रहते हैं, तुमने उसे उनके चरणों में भक्ति कभी नहीं मांगी, तुमने उससे अनित्य ये त्रिलोकी का राज्य ही मांगा, तो तुम्हारे जैसा और कोई बेवकूफ मूर्ख व्यक्ति जगत में उत्पन्न नहीं है। भगवान के चरणों में आकर के भी तुमने ऐसे ही उसी प्रकार से बलि महाराज जी त्रिभुवन के राज्य के मालिक थे, प्रभु ने देखा ये प्रहलाद महाराज जी का नाती है, प्रहलाद महाराज जी ने इस सबको तुच्छ मान करके हमारी कैसी अहेतुकी भक्ति की, और मैंने कहा है इसके वंश में जितने भी लोग आएंगे 21 पीढ़ी तक उनका उद्धार कर दूंगा, तो यदि ये संसार में लपटा पटा रह गया और भजन नहीं किया तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से च्युत हो जाऊंगा, इसलिए इस पर हमको कृपा करनी चाहिए। इसलिए छल से बल से उसका वो राज्य ले लिया जो आज न कल तो नष्ट होने वाला ही है, पहले कितनी बार नष्ट हो गया था, इसलिए चलाकी से उसको लेकर के और उसको परम भगवत भक्ति दी। उसके दरवाजे पर ये अंत में ये बतलाएंगे कैसे दरवान बन करके रहे, उनको दर्शन देने के लिए उनके बसी पूछते हुए इस तरह से भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं। ये संसार के जिस पर प्रसन्न होते हैं, हरि से तब धन सनई, उसका धन आसक्ति के वस्तुओं को हरण करके उसको अपनी परम भक्ति दे देते हैं, जिसे जन्म जन्मांतरों में उनको वो पा जाता है और उसका जीवन समाप्त। इसलिए ये उनको लेकर के हड़प करके उनको छल नहीं हुआ, ये उनकी यथार्थ कृपा रही। अब आगे आप लोग सब बात ये है, अम्बरीश महाराज जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए, ये ऋषि भी साधारण नहीं है, एक तो ब्रह्मज्ञानी है, ब्राह्मण है, और इसके बाद में बहुत सिद्ध ऋषि है। इनका यदि मैंने इनको भोजन करने के कराने के लिए कहा है और उनके आने के पहले मैं यदि कुछ पारण कर लूं तो उनका निरादर होगा, वो अभी संपात करेंगे और मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। दूसरी तरफ में मैं उस ब्राह्मण अतिथि का यदि सत्कार करता हूँ, उसके लिए प्रतीक्षा करता हूँ, और ये द्वादशी का व्रत का जो समय है पारण का वो यदि निकल गया तो हम भगवान की भक्ति से रहित हो जाएं। एक तरफ में ब्राह्मण का सम्मान, वो भी ऋषि महर्षि योगी, और दूसरे तरफ में भक्ति हानि होने का प्रसंग है। अब भक्ति हानि मैं सहूं अथवा ब्राह्मण का तिरस्कार हो जाए, मैं तो जानबूझकर कर नहीं रहा हूं, तो उनकी अवज्ञा से मुझे कुछ कष्ट भोगना पड़ेगा। अब दोनों मुझसे क्या करना चाहिए, ब्राह्मण लोग भी इसका उत्तर नहीं दे सके। अंत में उन्होंने विचार किया, वो भक्त है ना, ऐसे ऐसे हजार बार ब्राह्मणों का अनादर होने से भी हमारा कुछ हानि नहीं होगी, उससे होगा हम एक भ्रष्ट होकर के किसी दूसरे जूनी में जाएंगे, दरिद्र हो सकते हैं, फिर से भ्रष्ट हो जाए, किंतु भक्ति से भ्रष्ट नहीं हो, हम तो जैसा भी होगा सब क्लेश सहने के लिए तैयार हैं, किंतु भक्ति देवी को निरादर करने में हम समर्थ नहीं, इसलिए भक्ति का हमको आदर करना चाहिए। हमको भक्ति चाहिए, हम ये सब कुछ कर रहे हैं भक्ति के लिए, इसलिए भक्ति को हम नष्ट नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने ये ऐसा विचार करके तब उन्होंने पानी से पारण इसीलिए किया, भक्ति का हम आदर करते, इसके बाद में और किसी का, वो सब सामाजिक लौकिक चीजें हैं, और भक्ति है परमार्थिक, इससे भगवान मिलेंगे, और उससे एक ऋषि का आदर करने से न पुण्य होगा, पुण्य से न स्वर्ग मिलेगा। हमको स्वर्ग इत्यादि की जरूरत नहीं है, हमको भगवत भक्ति की जरूरत। ऐसा सोच करके उन्होंने संकल्प लेकर के और चरणामृत से उसका इसके बाद में आ अभी आरती होगी। बस दो एक बातें मैं बस कहूंगा, चक्षु दर्शन छूट जाए और कोई बच जाए ऐसा कभी संभव है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। चक्षु दर्शन ने पीछा किया, पित्या को उसी समय में मार डाला, उसे जला करके भस्म कर दिया, और भले उनके पीछे में दौड़ा दुर्वासा जी के पीछे, और एक वर्ष तक उनको कुछ नहीं कर सका, ये कैसे संभव हुआ? इसमें कुछ रहस्य है, और रहस्य ये है, भगवान ने मारने के नियत से उनको नहीं छोड़ा। दुर्वासा जी परम भगवत भक्त, शंकर जी के अवतार हैं, किंतु वो छिप छिप करके भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, अपने कष्ट भी पाते हैं तभी भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं। वो भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, एकादशी का महात्म्य बतलाने के लिए आए, और उन्होंने इसीलिए वो एक बरस तक भागते रहे, चक्र ने उनका कुछ भी नहीं, पीछे से अम्बरीश महाराज ने सब स्तुति करके उनको शांत कर दिया। कल भी बड़ी मनोहर लीलाएं होंगी, ये सांडिल्य ऋषि और गर्गाचार्य ने पहले ही से जान लिया कि कल कृष्णचंद्र जी अपने पूर्ण रूप में स्वयं भगवान के रूप में अवतरित, कल उनका आविर्भाव होगा। उन्होंने और किसी को नहीं बतलाया, किंतु ब्राह्मण लोग थे आसपास पर, उनको कुछ हिंट से, इंगित से बतलाया दिया कि कल उनका आविर्भाव होने वाला है। कल प्रसंग में कृष्णचंद्र जी का 9 बजे से 10 बजे के अंदर में हम जन्म लीला का उनका वर्णन करेंगे। उस प्रसंग में नंद यशोदा जी की इच्छा है कि कल हमारे लाला को जो देखने के लिए आए वो नंद भवन में ही प्रसाद पाए। जो हरि कथा सुन रहे हैं, जो सुनने के लिए आए हैं, सब लोगों के लिए नंद यशोदा जी की विशेष इच्छा है, उनके लाला को आप लोग सभी दर्शन करने के लिए पधारें। 10 बजे की कथा समाप्त होने पर आप लोग सब यहाँ पर आरती दर्शन करेंगे, बधाई के कुछ कीर्तन होंगे, महिलाएं भी 2-4 चुन करके ले आएंगे, और ये लोग भी भक्त लोग कीर्तन करने वाले यशोदा के लाला की बधाई के जो 2-4 कीर्तन होंगे। नंद बाबा अपना लेकर के कुछ आनंद के मारे जो कुछ उनके घर में आया वो सब कुछ जो आया था और अपने घर का भी सब कुछ लुटा दिया, कुछ अपने ले लिया, तो अभी उनके घर में एकदम भरी पूरी रहे। कृष्ण के लिए सेवा करने से कुछ कमी नहीं होगी। इसके बाद में नंद बाबा जी और यशोदा मैया जी कुछ प्रसाद की थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे। आप लोग ऐसा मत समझेंगे कि हम लोग हरि कथा सुन करके बस चले, प्रसाद का जरूर आगत करेंगे। अभी सुना ना, दुर्वासा जी ने माला दिया भगवान की, इंद्र को दिया, उन्होंने हाथी के सिर पर रख दिया और हाथी ने कुचल दिया, दूसरी से भ्रष्ट हो। इसलिए प्रसाद सेवन में नंद बाबा के घर में नंद भाव में प्रसाद पाने में हम लोगों का परम सौभाग्य होगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा विलंब करके करीब करीब 11 बजे तक उनका भोग राग होगा, थोड़ा सा प्रसाद पा करके तब यहाँ से। यही विशेष इसमें नंद बाबा और ये सब लोग तो हमारे बंसल जी है ही हैं। बंसल जी का सब परिवार ये है ही है। साथ साथ में कल के लिए विशेष स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता सोरे वाले उनका परिवार, विशेष से नंद बाबा का और यशोदा जी का, उनकी सास का नाम भी यशोदा था, इसलिए यशोदा के रूप में वो लोग कुछ आयोजन कर रही हैं नंद अपने लाला के उत्सव के लिए। उनकी पत्नी का नाम विजय कुमारी गुप्ता भी है और सब यहाँ पर आते हैं। उन सब लोगों के तरफ से कल ये क्षुद्र जैसा होगा महोत्सव होगा, आप लोग उसमें प्रसाद पाएंगे और इसकी व्यवस्था आप ही लोग करेंगे। लोगों को बैठाने के लिए, उठाने के लिए, प्रवेशन करने के लिए ये सभी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में। हमारे बंसल जी हैं, हमारे राम प्रकाश जी चुनी फूसी वाले हैं और हमारे कौन है सुनरी लाल जी हैं और सब इसे
Thank you.